جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں پہلا گھنٹہ ہمارا تسکین بہشتی زیور میں سے کتاب سلوک والاحسان پڑھنے کا ہوتا ہے. اس کے اندر حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے بیان فرمائے. تو حصول کے طریقے جو بیان فرمائے تھے، تو ان میں جو ہے وہ انسان کی جو انفرادی محنت ہوتی ہے وہ ساری بیان فرمائی کہ بھائی توبہ کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور خوف خدا حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، یعنی تمہارے اپنے جو ہے نا وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، صبر کا طریقہ پورا کا پورا سمجھا دیا، 5 مختلف قسم کے صبر کے مواقع بتا دیے، اور یہ بتا دیا کہ جی اس موقع میں ایسے کرو اور اس موقع میں ایسے کرو اس موقع میں ایسے کرو. شکر اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں جو ہے وہ شکر کی کیفیت نصیب ہو جائے. اسی طرح توکل، اللہ کی محبت، حکم پہ راضی رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہے نا وہ طریقے بتلا دیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت نے اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ حضرت نے اسی کتاب کے اندر، کتاب السلوک والاحسان کے اندر جو تیسرا موضوع رکھا وہ تھا شیخ کامل کے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے، شیخ کامل کے ساتھ تعلق کہ یعنی یہ اب کیوں بیان کر دی جب سارے طریقے سمجھا دیے کہ بھئی ایسے کر لو ویسے کر لو ویسے کر لو. ٹھیک ہے، اخلاق حمیدہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے، اخلاق ذمیمہ کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اخلاق ذمیمہ سے بچنے کے لیے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو یہ سب بھی بتا دیا. تو اب جو ہے وہ شیخ کامل کے ساتھ تعلق بھی کہاں سے بیچ میں آ گیا، اس کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ تو اس کے بارے میں پھر اگر ہم آپ سے پوچھ لیں کہ کیا ضرورت باقی رہ گئی اس کی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ پھر کافی ٹائم نکل جائے گا. تو ایسا کرتے ہیں آپ سے نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ بس اتنا سا بتا کر کے یا ریمائنڈ کرا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شیخ کامل کے ساتھ تعلق جو ہے نا اس سے وہ افعال کرنے جو کہ اخلاق ذمیمہ سے بچنے کے لیے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انسان کو خود کرنے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے بیہاف پر جی شاید یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، سوری. تو یہ جو اخلاق ذمیمہ سے بچنے کے لیے اور اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کے لیے جو بھی کام جی جزاکم اللہ، تو جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ انسان کو خود کرنے ہوتے ہیں، کسی دوسرے نے نہیں کرنے ہوتے. ٹھیک ہے، کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. جیسے علاج کے لیے جو ہے نا وہ دوائی مریض کو خود کھانی ہوتی ہے، کسی دوسرے نے آ کر کے اس کی جگہ پہ نہیں کھا لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی دوسرے نے آ کر کے مریض صاحب کی جگہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے، سارے کام انسان خود ہی کرنے ہوتے ہیں اپنے علاج کے لیے. لیکن شیخ کامل سے تعلق کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ اب اس کے اوپر بھی ایک سوال ہونا چاہیے، کیوں آسان ہو جاتا ہے بھائی؟ یہ آپ جواب دے دیں اگر. ٹھیک ہے، आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है भाई, इसके बगैर क्यों आसान नहीं हो जाता? शेख कामिल के साथ ताल्लुक के बगैर अखलाक जमीमा से बचने वाले अफाल करने आसान क्यों नहीं हो जाते, और अखलाक हमीदा को हासिल करने वाले अफाल करने आसान क्यों नहीं हो जाते? शेख कामिल से ताल्लुक के बगैर क्यों नहीं हासिल हो जाते, क्यों नहीं आसान हो जाते? ये जवाब अगर आप बता दें। जी क्या जवाब है इसका? और इतना आसान सा जवाब है कि एक लाइन में हो जाना चाहिए, शैतान के मुकाबले में मदद मिलती है। ठीक है, क्यों नहीं आसान हो जाते? चले आपने तो ये नहीं लिखा, लेकिन शैतान के लफ्ज तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह याद रखा ना, यही वजह है खाली, यही वजह है। क्या मतलब कि आपने जब इतना कुछ पढ़ लिया और उसको समझ लिया, ठीक है ना, कन्विंस भी हो गई, जबी तो अभी तक क्लास के अंदर बैठी हुई है, अगर कन्विंस ना होती तो आज क्लास में आप ना बैठी भी होती। क्या बकवास किए जा रहे हैं, क्या फजूल बातें किए जा रहे हैं, क्या बेकार किस्म की बातें किया जा रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और ये बैठ करके अखलाक हमीदा और अखलाक जमीमा की रटे लगाए चले जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रही होती तो अभी तक इस क्लास में नहीं होती। ठीक है, यह होती फिर भी होती, यानी बड़ा फारग टाइम है आपके पास, बड़ी फालतू किस्म की इंसान है कि बेकार किस्म की बातों को सुनने के लिए बैठी हुई है अभी तक। भाई जाएं कोई और काम करें, जिसको फायदा मंद समझती हैं वो वाला काम करें, यहाँ पे क्यों बैठी हुई है? मत बैठे यहाँ पर अगर इसको बेफायदा समझती है। ये मेरा आपको यानी नसीहत ही कह सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं आपको मैं क्विट करवा सकता इस क्लास से। ठीक है, तो भाई कुछ फायदा मिल रहा है तभी बैठी हुई है ना, यानी अकली तौर पर आप कन्विंस हो चुकी हैं। ठीक है, अकली तौर पर इस बात की अहमियत को समझ रही हैं तभी इस क्लास के अंदर बैठी हुई हैं। सही है, तो अब अकली तौर पर किसी बात की के ऊपर कन्विंस हो जाना क्या जरूरी है इसके बाद कि अब आप वो कर भी सकेंगी, अब उसके ऊपर आप अमल कर भी सकेंगी, क्योंकि आप अकली तौर पर कन्विंस हो गई हैं? नहीं, कोई कोई गारंटी तो क्या, बल्कि कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके रास्ते में, उनके ऊपर अमल करने के रास्ते में रुकावटें मौजूद हैं, रुकावटें मौजूद हैं। ठीक है ना, वो रुकावटें इतनी स्ट्रॉन्ग रुकावटें हैं कि आप उनको अबूर करके आगे नहीं बढ़ सकेंगी, अमल नहीं कर सकेंगी। वो रुकावटें, सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है अमल के रास्ते में, सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? इंसान का अपना नफ्स, नफ्स अम्मारा, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी रुकावट, जो कि नफ्स के पीछे ही छुपी हुई होती है असल में, नफ्स की रुकावट तो असल बड़ी रुकावट है ना, और वो इतनी बड़ी है कि उसके पीछे क्या चीज होती है वो नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो उसके पीछे क्या चीज छुपी हुई है? शैतान। ठीक है ना, जो कि हाइड करता है नफ्स के पीछे, नफ्स के पीछे छुपा हुआ होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता। सही है, तो ये जो शैतान की रुकावट है ये ही बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक है, तो इंसान अकली तौर पर जानता है कि हाँ भाई ये अखलाक जमीमा है, मुझे इनसे बचना चाहिए, ये अखलाक हमीदा है, मुझे इनको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये रुकावटें इतनी बड़ी हैं और इतनी खतरनाक रुकावटें हैं कि इनको अबूर नहीं कर पा रहा होता। इस वजह से अल्लाह ताला ने जो है ना वो शेख कामिल वाला ताल्लुक अपने दीन के अंदर बना दिया, और इसके लिए अल्लाह ताला ने नबियों को दुनिया के अंदर भेज दिया, नबियों को इसीलिए भेजा अल्लाह ताला। ठीक है ना, वरना अल्लाह ताला हमारे अकल के अंदर बात डाल सकते थे, है ना, इंट्यूशन। अल्लाह ताला ने अकल में कितनी सारी बातें डाली हैं, जब भूख लगती है तो खाने को तलाश करते हैं, ये अकल के अंदर एक एक फितरत हमारे अंदर डाली हुई है ना कि खाना तलाश करते हैं, पानी तलाश करते हैं, उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला हमारे अकल में पैदा कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला चोज नॉट टू। अल्लाह ताला ने फैसला ये किया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं, बल्कि मैंने नबियों का निजाम बना, नबियों को भेजना है। तो नबी क्या होते हैं? शेख कामिल होते हैं, और क्या होते हैं नबी? शेख कामिल। ठीक है ना, उनका यही तो काम होता है कि वो इल्म भी सिखाएं और उस इल्म के ऊपर अमल करना भी सिखाएं, और रास्ते की रुकावटों को अबूर करने में हमारा हाथ थामें। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो अकली तौर पर कन्विंस हो जाएं कि जी मुझे हज पे जाना है, ठीक है, मुझे हज पे जाना है, मुझे उमरे पे जाना है, मुझे मदीना मदीना तैयबा जाना है, बहुत अच्छी जगह होती है, बड़ी जबरदस्त जगह होती है, और वहां पे जो है ना नबी अलैहिस्सलाम भी होते हैं मदीना तैयबा के अंदर, राइट। और वहां पर जो है वो काबतुल्ला भी होता है मक्का मुकरमा के अंदर। तो आप अकली तौर पर हो गए कन्विंस, जाके दिखाएं, जा सकती हैं। कि मैं कन्विंस हो गई हूँ तो अब मैं मक्का चली जाऊंगी, मैं मदीना मुनव्वरा चली जाऊंगी, नहीं, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि रास्ते में रुकावटें हैं, ठीक है ना। लंबा रास्ता, ये एक रुकावट है। गर्मी शदीद होती है, ये एक रुकावट है, ठीक है ना। ये सब रुकावटें हैं। इन रुकावटों को अबूर करने के लिए आपको हेल्प चाहिए है। वो हेल्प किस शक्ल में आएगी? वो किसी ऐसी शख्सियत की शक्ल में आएगी जो कि आपको मदद कर सके वहां तक पहुंचने में, ठीक है ना। और उसके लिए जो है वो आप आज हर जमाने के हिसाब से अलग अलग मदद होती है। आपको जो है वो टिकट के पैसे दिलवा सके, एयरलाइन टिकट, ठीक है ना, एयरलाइन टिकट का पैसा जो है वो आपको दे सके ताकि आप टिकट खरीद सकें, या टिकट खरीद करके आपको ला करके दे सके, ठीक है। और आपको जो है वो एयरपोर्ट पहुंचा सके। और अगर आप खातून हैं तो आपके साथ महरम मर्द का रोल प्ले कर सके, अगर वो महरम मर्द है आपके साथ जो आपके साथ ट्रैवल कर सके। तो ये सारे असबाब चाहिए होंगे मदीना तैयबा पहुंचने के लिए, मक्का मुकरमा पहुंचने के लिए। सिर्फ अकली तौर पर कन्विंस हो जाना आपको मक्का मुकरमा नहीं पहुंचा देगा, मदीना तैयबा नहीं पहुंचा देगा, ठीक है। तो बस यही मामला है शेख कामिल के साथ ताल्लुक का भी, कि ये अल्लाह ताला ने असबाब का एक निजाम बना दिया है। अब इसके अंदर जो है वो हम, यानी ये जो तीसरा मौजू है शेख कामिल के साथ ताल्लुक, तो उसमें हम पीरी मुरीदे का, पीरी मुरीदी का बयान पढ़ चुके हैं, शेख कामिल की अलामात पढ़ चुके हैं, मुर्शिद से ताल्लुक के आदाब जो है पढ़ने शुरू कर चुके थे। इसमें हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि अपने शेख और मुर्शिद का खूब अदब करे, जिक्र व अजकार के जो तरीके वो बताए उनकी पाबंदी करे, ठीक है। और आजकल तो इतना ज्यादा हमारा लिहाज करते हैं हमारे मशायख, कि वो जब भी ये कहते हैं ना पाबंदी करे, तो साथ साथ जो है ना वो कोशिश का लफ्ज भी लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि हम जो है ना वो उखड़ ना जाए कि जी वो पाबंदी करना इतना मुश्किल काम, पाबंदी मुझसे तो नहीं होती पाबंदी। भाई पाबंदी करने को नहीं कह रहे, पाबंदी करने की कोशिश करने को कह रहे हैं। आप कोशिश करें ना, बाकी अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। तो जब कोशिश का लफ्ज बीच में आ जाता है तो फिर मसला आसान लगने लगता है, कि यहाँ पे बस कोशिश ही करने को कह रहे हैं। अभी और बात है कि कोई कह के नहीं, कोशिश भी करने को क्यों कह रहे हैं, मैं तो कोशिश भी नहीं कर सकती, तो फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता, आप कुछ भी ना करें फिर, ठीक है। तो कोशिश करें भाई, अपने शेख के बारे में ये एतकाद रखे कि इस्लाही ताल्लुक रखने में मुझे जितना फायदा इनसे पहुंच सकता है, इतना इस जमाने की किसी और बुजुर्ग से नहीं पहुंच सकता, ठीक है। इस जमाने के किसी और बुजुर्ग से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि शेख जो होता है ना वो सिर्फ वही इंसान हो सकता है जो हमारे जमाने में जिंदा हो, ठीक है ना, हमारे जमाने में जिंदा हो, जो इस जमाने से गुजर गए, जो कब्रों में पहुंच गए, चाहे वो कितने ही बड़ी बड़े अल्लाह के वली हों, कितने ही बड़े जो है ना वो बेहतरीन शेख हों, वो शेख कामिल हमारे नहीं बन सकते, ठीक है ना। क्योंकि शेख कामिल के लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो, जिंदा हो, मौजूद हो, ठीक है, किताबों के अंदर मौजूद ना हो बल्कि जमीन के ऊपर चलता फिरता हुआ इंसान हो, ठीक है। तो जमाने से पहले वाले जो हैं वो तो बन ही नहीं सकते, तो इस वजह से इसी जमाने के मशायख में से जो है ना वो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मेरे अपने शेख ही हैं, ठीक है। इसी को जो है वो दूसरे अल्फाज में भी हमारे मशायख कहते हैं कि हर जाई ना बने, हर जाई, हर जाई का मतलब होता है हर जगह चला जाने, चले जाने वाले, जो भी बड़ा नाम नजर आया, ओ बड़े शेख आ गए हैं, बड़े आलिम आ गए हैं, बड़े बुजुर्ग आ गए हैं, चलो जी मैं उनके पास भी चला जाता हूँ, अच्छा मैं उनके पास भी जा करके बैठता हूँ, मैं उनकी जो है वो बात भी सुनता हूँ, ठीक है ना। हर जाई ना बने, आजकल तो हर जाई बनने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता, ठीक है ना, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, घर में बैठ करके हर जाई, ठीक है। क्यों? इसलिए कि इंटरनेट जो है वो हर एक के पास मौजूद है, चाहे लैपटॉप की शक्ल में पहले मौजूद था, अब तो फोन की शक्ल में हर एक के हाथ में मौजूद है। तो अब जो है ना वो हरजाई बनने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता, बल्कि सिर्फ वन क्लिक, इधर क्लिक किया उधर शेख साहब का बयान शुरू हो गया, इधर क्लिक किया फलाने शेख साहब का बयान शुरू हो गया, एक और क्लिक किया फला तीसरे शेख साहब का बयान शुरू हो गया, ठीक है ना। और उसके लिए जो है ना वो दे धनाधन व्हाट्सएप ग्रुप्स भी सब्सक्राइब किए हुए होते हैं, और जो है वो यूट्यूब चैनल्स भी सब्सक्राइब किए हुए होते हैं, और न जाने क्या क्या जो है वो सब्सक्राइब कर लेते हैं कि क्लिक भी ना करना पड़े बल्कि वहीं से खुद ही आना शुरू हो जाए, है ना। जब भी वहां पे बयान कहीं पे भी बयान चले फौरन जो है वो मैसेज आ जाए, ठीक है, और जो है ना वो बस वो कल चलना शुरू हो जाए हमारे पास। तो इस वजह से जो है ना वो ये दौर जो है वो हरजाईपन की इंतहा का दौर है। और हरजाईपन की इंतहा का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जो है ना वो मुंतशिर रहता है, यकसू नहीं हो पाता कभी भी, ठीक है। तो मुंतशिर इंसान डिस्ट्रैक्टेड इंसान होता है, डिस्ट्रैक्टेड इंसान किसी काम का नहीं होता, ये कोई काम नहीं कर सकता, ये काम बिगाड़ जरूर सकता है लेकिन काम बना नहीं सकता, ठीक है ना। ये अपनी इसलाह नहीं कर सकता या ना नहीं कर सकती, ये दूसरे की मदद क्या करेगी। लेकिन शैतान ने उसको ये बेवकूफ बनाया हुआ होता है कि जितना ज्यादा लोगों को सुनोगे, जितना ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज आएगी, जितना ज्यादा तुम्हारे पास फैक्ट्स आएंगे, फिगर्स आएंगे, तो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा और तुम्हारे लिए अमल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो ये शैतान का बहकावा होता है। इसलाह ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे इसलाह नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी ने लिखा है कि हमारे मोहल्ले में बहुत से मौलाना देवबंद यूपी से आते हैं और सब उनसे मुलाकात करने जाते हैं मुलाकात की नीयत से, तो क्या ये गलत है, बैत की नीयत से नहीं जाते। भाई अगर अपने शेख की इजाजत से जाते हैं ना तो फिर तो गलत नहीं है, और अगर अपने शेख की इजाजत से नहीं जाते हैं तो फिर भी गलत है, ठीक है ना। ये बहुत सादा सा इसका जवाब यही है। अगर अपने अच्छा, उनका शेख ही कोई नहीं है तो फिर किससे इजाजत लेंगे, तो फिर वो शैतान से इजाजत ले लेकर के मौलाना देवबंद से मिलने के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है। तो शैतान कहते हैं हाँ तुम इन मौलाना से भी मिलने चले जाओ, तुम इन मौलाना से भी मिलने चले जाओ, ठीक है ना। क्योंकि शैतान को पता है कि वो जब हर वक्त हर एक से मिलता रहेगा ना तो ये मेरे सामने टिक नहीं सकेगा, मेरे लिए तरने वाला रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, मुंतशिर रहेगा, ठीक है। तो जिनका शेर शैतान होता है तो वो शैतान से इजाजत लेके मौलाना साहब से मिलने चले जाते हैं, ठीक है। और शैतान क्यों इजाजत दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये जरा उस मिजाज में पहुंच चुका है कि जिसमें इसको मौलाना से मिलने का शौक हुआ हुआ है, अब मैं इसको अगर मना करूंगा ना तो ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं इसको इजाजत दे करके अपना फायदा हो, ठीक है ना। वो इजाजत दे करके अपना फायदा हासिल करता है कि बंदे को मुंतशिर कर देता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़े, हमारे शहर के अंदर एक शेख आए, इंडिया के थे, बहुत बड़े, ठीक है ना। अच्छा वो खाली आए नहीं कि वो जो है ना मेरा दिल चाहे मैं उनसे जाके मिलूं, दिल तो खैर चाहना ना चाहना वो एक अलग डिस्कशन है, उन्होंने बाकायदा मैसेजेस भेजे कि आप आए मुझसे मुलाकात करने के, इस फकीर के पास मैसेजेस आए कि आप आए मुझसे मुलाकात करने के, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ने अपने हजरत को फोन किया, हजरत वैसे तो मैं फोन भी ना करता कि भाई मैं क्यों जाऊं मिलने के लिए किसी से, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वो बार बार मैसेजेस भेज रहे थे तो इस वजह से अपने शेख को फोन किया कि हजरत मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, आप बता दीजिए, जो आप फरमाएंगे मैं वही करूँगा, ठीक है। तो हजरत ने जवाब दिया जो मुंतशिर होता है ना वो किसी काम का नहीं होता, और क्या जरूरत है आपको जाने की, बस अपना किबला जो है वो दुरुस्त रखें, अपना कबला एक ही होना चाहिए। तो कबला से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि आप शेख को सजदा करना शुरू कर देते हैं, ये तो शिर्क हो जाएगा अगर शेख को सजदा करना शुरू कर दिया। कबले से मुराद ये है कि अपनी तवज्जो का कबला एक ही रखें, ठीक है। तो बहरहाल हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरा अपने शेख के बारे में ये गुमान है कि या तो मुझे शेख कामिल मिले हैं या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु शेख कामिल मिले थे। ये उर्दू का मुहावरा है असल में, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका कि मेरा ख्याल ये है कि मैं जितना खुश नसीब हूं ना शेयर के मामले में, मुझे शेयर कामिल मिले, ठीक है ना, उतने खुश नसीब जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मिले थे, ठीक है। तो यानी इसका मकसद ये नहीं है कि नाउज़ बिल्ला मेरे मेरे शेयर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के बराबर हो गए, हरगिज़ हरगिज़ इसका मतलब नहीं था। मुजद्दद अफ़सानी रहमतुल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं फरमा रहे थे, बल्कि ये फरमा रहे थे कि मैं अपने शेयर के साथ उतना ही मुतमईन हूँ जितना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुतमईन थे शेख के ताल्लुक में। ये नहीं कि मेरे शेख नबी बन गए हैं, उनको नाउज़ बिल्ला नबुवत मिल गई है और ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ठीक है। और ये भी कि भाई मैं इधर उधर दूसरे शेखों की तरफ क्यों देखूं। तो अब ये इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वाकई जो इंसान का शेख है ना वो दुनिया के सारे मशायख के मुकाबले में सबसे ज्यादा मुत्तकी है, या दुनिया के सारे उलमा के बारे में सबसे ज्यादा इल्म वाला है, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा शेख जो है वो सबसे बड़ा आलिम है, मेरा शेख जो है वो सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, हरगिज हरगिज इसका ये मतलब नहीं। अब इसके ऊपर जो है ना वो बात जरा मुश्किल हो जाती है थोड़ी समझ, कि ये कैसे हो सकता है कि वो सबसे बड़े आलिम नहीं है, वो सबसे बड़े मुत्तकी परहेजगार नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये गुमान कर रहा है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मेरे शेख ही हैं, ठीक है। तो भाई बड़ा आसान सा है इसको समझना कि इंसान की माँ कितनी होती है, राइट, मदर्स कितनी होती हैं, एक ही माँ होती है ना, एक से ज्यादा माएँ होती हैं, माँ तो एक ही होती है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जी मेरी माँ जो है ना वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है सारी माओं के मुकाबले में, जितने दूसरी औरतें दुनिया में रहती हैं उनमें सबसे ज्यादा मेरी खूबसूरत खूबसूरत मेरी माँ है, सबसे ज्यादा जो है ना वो बेहतरीन अखलाक वाली मेरी माँ है, सबसे ज्यादा जो है वो बेहतरीन इल्म वाली मेरी माँ है, राइट, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन बच्चे का अपनी माँ के बारे में गुमान क्या होता है, बेशक सबसे ज्यादा खूबसूरत वो नहीं है, सबसे ज्यादा आलिमा वो नहीं है, सबसे ज्यादा फाजिला, सबसे ज्यादा यानी चीता इंसान मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ी है, मेरे लिए जो है ना वो सबसे हसीन है ना। जिनको अपनी माँ से मोहब्बत होती है वो इस बात को आसानी से समझ सकती है, मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है। कितना मुश्किल जुमला है ये समझना, मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है, बेशक वो सबसे ज्यादा हसीन नहीं, ठीक है। बिल्कुल यही मामला जो है वो शेर के साथ होता है कि भाई मुझे जो रिस्क मिलेगा ना वो मेरी माँ से मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं अपनी माँ को छोड़ करके पड़ोस वाली आंटी के पास चली जाऊं, कि आंटी आज आप दे दीजिए, फिर कल को जो है ना वो किसी दूसरी वाली आंटी के पास चली जाऊं, आंटी आज आप जो है ना वो मुझे फलानी चीज सिखा दीजिए, फिर तीसरी आंटी के पास चली जाऊं, हालांकि माँ मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है, सबसे ज्यादा खाना वो मुझे नहीं खिला सकती, सबसे बेहतरीन लज्जत वाली गजा मुझे नहीं खिला सकती, लेकिन है तो ना मौजूद मुझे खिलाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो जिस तरह माँ से ही मिलना है जो कुछ भी मिलना है, उसी तरीके से जो कुछ भी मिलना है ना वो अपने शेर से ही मिलना है, ठीक है। और फिर जो थोड़ा सा ज्यादा अकल लुभ वाले लोग होते हैं वो इस बात को भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई जो माँ होती है ना वो भी वसीला ही होती है, देने वाले तो अल्लाह ताला की जात है, देने वाला तो अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला ने माँ को मेरी माँ बना दिया, अल्लाह ताला ने ही मेरी माँ को मेरी माँ बनाया, ठीक है। और देना तो अल्लाह ने ही है, शेख ने खुद को थोड़ी देना, माँ ने खुद को थोड़ी देना, तो भाई हम इधर उधर मुंह मारने के बजाय जो है वो अपनी माँ के साथ मुतमईन रहें, क्योंकि मिलना तो अल्लाह ही से है और उसने माँ के वास्ते से हमें देना है, ये अल्लाह ताला का निजाम है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, बल्कि एक और बात इसके अंदर ये भी याद रखें जो कि सिंपल अकली अकली तौर पे समझने वाली बात है कि भाई जब हम यकसू नहीं होते ना शेर के साथ, तो एक तो हमारी तरफ से नुकसान, यानी हम ये कर रहे होते हैं कि हमारी तवज्जो जो है वो बट रही होती है, ठीक है ना, हमारा हमारा जहन जो है वो मुंतशिर हो रहा होता है, तो हम जो है ना वो इस इंतशार के साथ फायदा हासिल नहीं कर पाते। आप एक किताब ही पढ़ लें खाली, किताब ही पढ़ लें खाली, अगर आपका जहन मुंतशिर हो तो वो कितनी ही अच्छी किताब क्यों ना हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। राइट, बेतवज्जुही के साथ आप बेहतरीन किताब को पढ़ लें, आपको किताब से फायदा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन तवज्जो के साथ आप किताब को पढ़ें, बेशक वो सबसे अच्छी किताब ना भी हो, फिर भी आपको बहुत सारे इल्मी नुकात उससे मिल जाएंगे, ठीक है? तो तवज्जो जो है ना, ये असल चीज होती है। तवज्जो से सुनना, तवज्जो से पढ़ना, तवज्जो के साथ जो है ना वो किसी के सामने जाकर के बैठना, असल चीज ये होती है। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये भी याद रखें कि शेख भी इंसान ही है, ठीक है ना? और उस शेख के जो है ना, वो सिर्फ आप अकलौते मुरीद नहीं होते, अकलौते तो नहीं होते। तो इस वजह से जो है ना, अगर आपकी तरफ से तवज्जो नहीं होगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये रेसिप्रोकेट भी होता है, रेसिप्रोकेट भी होता है, ठीक है? कि फिर शेख की तरफ से भी जो है ना, वो आपको वो तवज्जो नहीं मिल सकेगी, वो मोहब्बत नहीं मिल सकेगी, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी वालदा की अकलौती हैं, अकलौती है ना, वालदा के पास और कोई है ही नहीं, तो अब अगर आप जो है वो पड़ोस वाली आंटी के पास कभी जा रही हैं, कभी किसी आंटी के पास जा रही हैं, तो वो वालदा जो है ना, वो आपके पीछे पीछे, बेटी नहीं मुझे मत छोड़ना, राइट, तुम उधर क्यों जा रही हो, तुम उधर क्यों जा रही हो, तुम उधर क्यों जा रही हो, सही है? अगर आप अकलौती हैं तो फिर तो ऐसा होगा, लेकिन अगर आप अकलौती नहीं हैं बल्कि आपके साथ और भी बहुत सारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, कई सारे भाई बहन अगर आपके साथ और भी हैं, तो फिर क्या होगा भाई, वालदा जो है उसकी तवज्जो किसी और के ऊपर रहेगी, कि जो ज्यादा मुतवज्जे है, जो ज्यादा जो है वो यकसू है उसके साथ, जो ज्यादा जो है वो उसके पास वक्त गुजारता है, उसके पास तवज्जो होगी ना, बजाय इसके कि आपके ऊपर होगी, आप जो है वो कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, ठीक है? तो शेख की भी तवज्जो और मोहब्बत जो है ना, वो इससे मुतासर होती है, क्योंकि वो अकेले आप उनके अकलौते नहीं होते, ठीक है? बहुत सारे इसके ऊपर अकली और नकली दलीलें मौजूद हैं, यकसुई के मौजू के ऊपर बहुत सारी दलीलें मौजूद, ठीक है ना? लेकिन इनसे फायदा किनको होता है, जो मानने वाले होते हैं, जो मानने वाले नहीं होते, उनको 10 लाख दलीलें मिला करके दे दो ना, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है? बाकी किसी ने सवाल पूछा कि जी रमजान मुबारक में खानकाह से जो बयान नशर होते हैं उनको सुन सकते हैं, या बड़े हजरत जी के बयान कभी सुन लिए जाए भाई? एक तो शेख के इजाजत के साथ, ठीक है ना, बड़े हजरत जी के बयान भी हो सकता है आपके लिए नुकसानदेह हो जाए, ये भी मुमकिन है। बड़े हजरत जी ज्यादा बड़े हैं कि अल्लाह ताला ज्यादा बड़े हैं, अल्लाह ताला ज्यादा बड़े हैं कि बड़े हजरत जी ज्यादा बड़े हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला ज्यादा बड़े हैं ना, तो अल्लाह ताला का जो कलाम है तो उससे तो फायदा ही होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। लेकिन अल्लाह ताला के कलाम से क्या सबको फायदा होता है? नहीं, अल्लाह ताला के कलाम से सबको फायदा नहीं होता। यहदी बिही कसीरों वो युज़िल्लु बिही कसीरों वो यहदी बिही कसीरों, राइट? अल्लाह ताला के कलाम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम के अंदर ही फरमा दिया कि इसी कलाम से जो है ना, वो हम बहुत सौ को गुमराह कर देते हैं, और इसी कलाम से हम बहुत सौ को फायदा पहुंचा देते हैं, हिदायत दे देते हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ बड़े हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसको उससे जो है ना वो फायदा ही हासिल होता है उसकी बात से, नहीं, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना, वो ये भी सुन, ये भी जो है ना वो पढ़ लेना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए, ठीक है ना? आइडियली स्पीकिंग पूछ करके बड़ों के बयान आप सुनने चाहिए, पूछ करके, आइडियली स्पीकिंग। ये और बात है कि हमारी तरफ से एक होता है कि हम खुद अरेंज करते हैं हजरत के बयान आप सुनने के लिए, बाकायदा जो हमारे यहाँ तरावी होती है तो कलेक्टिवली जो है ना सारे बैठ करके जो है वो महद से आने वाले बयान आपको सुनते हैं, तो हमने अपनी तरफ से खुद जो है वो इस चीज का इंतजाम किया हुआ है, तो फिर इसके अंदर जो है वो कोई वो नहीं, अब पूछने की जरूरत बात ही नहीं रह गई, रमजान मुबारक में जो बयान आता शुरू होता है, अब उसमें पूछने की जरूरत बात ही नहीं रह गई, क्योंकि हम खुद अरेंज कर रहे हैं। कल ही, लिटरली यस्टरडे, कल ही मुझे साहब जो है ना, वो एक साहब जो है ना वो मैसेज करते हैं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े जो है ना वो जी शऊर और बड़े दीनदार, मैसेज करते हैं कि जी मैंने जो है ना वो हजरत जी दामत बरकात उनका मिसाली बेटा वाला बयान जो है ना वो मिसाली मर्द के किताब में से पढ़ा, और उसके अंदर हजरत ने ये फरमाया हुआ था, ये फरमाया हुआ था, ये फरमाया हुआ था, और उसके बाद जो है ना वो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तो बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, मिसाली बेटा का बयान मिसाली मर्द किताब में से, किसकी किताब? हमारे हजरत जी दामत बरकातहू की किताब। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने उस बयान को पढ़ करके अपने लिए जो नतीजे अखज कर लिए थे ना वो उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह थे। उन्होंने अपने लिए जो नतीजे अखज कर लिए थे हजरत जी के बयान मिसाली बेटा में से ना, वो उनके लिए डेडली थे, डेडली। अल्लाह ताला ने इस फकीर को तौफीक दी, उनको लंबा फिर समझाया। ठीक है ना, मैंने उनको समझाया कि भाई आप हजरत जी के बयान पढ़ करके अपने बारे में जो फैसले करके बैठे हुए हैं ना, तो भाई ये भी याद रखें कि हजरत जी ये भी फरमाते हैं, जिनका के यानी वो आपको पता नहीं कि हजरत जी अच्छा ये भी फरमाते हैं, और फिर हजरत जी में ये भी फरमाते हैं हजरत जी, फिर हजरत जी ये भी फरमाते हैं, ये भी फरमाते हैं, ये मैंने बताया उनको। ठीक है ना, उनके जहन में ये सारी बातें थी नहीं, उन्होंने तो एक मिसाली बेटा का बयान पढ़ा, और जो है ना वो कौन होता है उस्ताद, किताब तो हजरत जी की थी लेकिन उस्ताद हजरत जी तो नहीं थे वहां पे। ठीक है ना, तो उस्ताद जो है वो तो शैतान था, जिसकी उस्तादी के अंदर वो हजरत जी का बयान सुन रहे थे या हजरत जी का बयान पढ़ रहे थे। अब सुनना पढ़ने में कोई फर्क नहीं होता, वो भी ऑडियो बुक्स ही होती हैं जो बयान सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शैतान ने जो है ना वो उनको यानी कन्विंस कर दिया कि अच्छा तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए था। ठीक है ना, हालांकि उनके लिए ये जो कंक्लूजन उन्होंने खुद से डिराइव किए थे वो नुकसानदेह थे। ठीक है ना, तो बड़ा उनको समझाया, उम्मीद है कि उनकी बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने इरादा तो कर लिया कि अच्छा मैं आपके पास आकर के फिर तफसील से अपने हालात को डिस्कस करूंगा, और फिर फैसला जो है ना फिर उसके बाद करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई आपको कि नहीं समझ में आ गई? ठीक है, बहरहाल तो मुर्शिद से ताल्लुक के आदाब, आगे फरमाते हैं कि अगर बेदीन पीर से ताल्लुक हो जाए, अगर गलती से किसी बेदीन पीर से ताल्लुक हो जाए, या पहले वो सालेह था बाद में बिगड़ गया, तो उससे ताल्लुक खत्म करके किसी मुत्तबे शरीयत बुजुर्ग से मुताल्लिक हो जाए। ठीक है, यानी जैसे कि बेशुमार जो है वो बेदीन पीर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, खुसूसन जो है वो बरेलवी मकतबे फिक्र, वहां पर तो एक से एक बढ़ करके जो है वो बेदीन पीर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, बस गद्दी नशीन बन गए, बाप मर गया और बेटा जो था वो जो भी था जैसा भी था, लोग जो है वो उसको गद्दी नशीन अपने बाप की गद्दी के ऊपर बिठा देते हैं, बाप की जो है वो सज्जादे के ऊपर बिठा देते हैं। अब कुछ भी नहीं आता इसको, कोई काम इसका ठीक नहीं है, लेकिन फ्री में पीर बन के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, अब लोग जो है वो ऐसे फीर ऐसे फ्री के पीर के साथ जो है वो अपना ताल्लुक बना लेते हैं। तो भाई बंद खत्म करो उस ताल्लुक को, वो शैतान का एजेंट है, वो तुम्हें जो है ना वो अपने साथ जहन्नुम में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो उनके साथ ताल्लुक फौरन तोड़ देना, फौरन तोड़ देना, एक लम्हे के लिए भी। जब बात समझ में आ जाए कि हाँ भाई वो बेदीन है, तो एक लम्हा भी मजीद उसके साथ ताल्लुक नहीं रख सकते। ठीक है ना, अब दूसरी बात यह है कि पहले तो दीनदार था, यानी सही अकीदे वाला था, सही उलमा के साथ जुड़ा हुआ था और सही सब कुछ था, और अब जो है वो ताल्लुक यानी अब उसका मामला जो है वो खराब हो गया है, तो उसके साथ भी ताल्लुक खत्म करके किसी मतलब शरीयत बुजुर्ग से मुताल्लिक हो जाए। ठीक है, लेकिन आगे फरमाते हैं कि अगर कोई हल्की सी बात कभी कभार पीर से हो जाए, तो यूं समझे कि आखिर ये भी तो इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है, इससे गलती हो गई जो तौबा से माफ हो सकती है। ठीक है, तो अमली तौर पर गलती जो है ना वो शेख से भी हो सकती है, तो उसको जो है ना उसके लिए भी लेवरेज रखे कि भाई तौबा अल्लाह ताला ने खाली मेरे लिए नहीं रखी, तौबा जो है वो पीर साहब के लिए भी रखी हुई है। ठीक है, तो वो भी तौबा कर लेंगे, बता रहा उनके गुनाह को भी माफ कर देंगे, जरा जरा सी बात पर एतिकाद खराब ना करे। अलबत्ता अगर वो इस खिलाफ शरा बात पर डटा रहे तो फिर ताल्लुक तोड़ दे। ठीक है ना, ये जुमला असल है, इसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। ठीक है ना, कि अगर वो इस खिलाफ शरा बात पर डटा रहे तो फिर ताल्लुक तोड़ दे। इस एक जुमले को अगर आपसे हम ये कहें कि रीवर्ड करके बताएं, टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करके इस जुमले को बयान करें, ठीक है? ये तो हजरत ने खवातीन, क्योंकि बेहश्ती ज़ेवर हजरत ने असलन जो है वो खवातीन के लिए लिखी थी, ठीक है? तो खवातीन में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, डटा रहना वगैरह, ठीक है ना, तो हजरत ने उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके बात बयान कर दी। लेकिन माशाल्लाह इन वाली खवातीन यहाँ मौजूद है, तो वो इसमें किसके लिए टेक्निकल टर्म बताए, इस जुमले को रीवर्ड करें, ठीक है? कि अगर वो इस खिलाफ शरा बात पर डटा रहे तो फिर ताल्लुक तोड़ दे, तो डटा रहे खिलाफ शरा बात पर इसको क्या कहा जाता है, ठीक है? जी, एतिकादी नहीं, अकीदे का खराब हो जाना, अकीदे का खराब हो जाना, एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो एतिकाद जो है वो लफ्ज थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन असलन वो भी खैर अकीदे से ही डिराइव है। तो अकीदे का खराब हो जाना, क्योंकि जब किसी गलत बात के ऊपर इंसान डट जाए ना, डटने का मतलब ये होता है उसको जस्टिफाई करना, ठीक है ना, यानी गुनाह को गुनाह ना समझना, या गुनाह को नेकी का काम कहना, गुनाह को नेकी कहना, ये अकीदे का फसाद है, अकीदे का फसाद। और अकीदे के फसाद के बाद जो है ना, फिर उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है, ठीक है? तो अब ये अकीदे का फसाद जो है ना, वो अब हमारे लिए आजकल माशाल्लाह अल्लाह ताला जजाए खैर अता फरमाए खत्म नबूवत वालों को, कि माशाल्लाह इतनी जो है ना वो भरपूर मेहनत कर रहे होते हैं कादियानियों के खिलाफ और दूसरे इस किस्म के जो झूठे नबियों का दावा करने वाले, नबूवत का दावा करने वाले लोग हैं, इतना ज्यादा उन्होंने चूंकि मेहनत करी है, तो इस वजह से जो है ना वो हमारी, खैर ये हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने तो मेहनत करी और बहुत जबरदस्त मेहनत करी है। हमारी गलती यह है कि हमने उनकी मेहनत को देख देख करके, उनके बारे में पढ़ पढ़ करके जो है ना, वो हमारी सुई एक जगह पे अटक गई है। वो क्या है कि अकीदे खराब होने का मतलब सिर्फ एक है कि खत्म नबूवत का इनकार कर दिया, बस उसके अलावा कोई अकीदे की खराबी हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो हमारा अकीदा जो है ना वो मर्ज होकर के एक खत्म नबूवत के अंदर महसूर हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। खत्म नबूवत का इनकार तो ऑफकोर्स इंसान को काफिर बना देता है, उसका अकीदा खराब हो जाता है, लेकिन भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से जो है ना वो इंसान का अकीदा खराब हो जाता है, सिर्फ खत्म नबूवत नहीं है, ठीक है? तो इंसान को अकीदे के जो है ना वो ओवरऑल बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, खुसूसन आज के दौर के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जरा लिखा था किसी के जवाब में कल ही, तो वो थोड़ा सा चूंकि जनरल किस्म का टॉपिक था अकीदे के मुताबिक, अलबत्ता क्लासेस के अंदर तो उसके ऊपर अलहम्दुलिल्लाह बात होती ही रहती है कि अकीदा ही असल चीज है, बाकी जो आमाल वगैरह होते हैं ना ये तो ब्रांचेस होती है, ये तो फुरवात होती है, असल तो अकीदा है जिसके ऊपर ईमान की बुनियाद होती है। तो अकीदे की खराबी ये भी है कि जो चीज शरीयत में गुनाह कबीरा के तौर पर कंफर्म हो चुकी, उसके ऊपर दलायल कतईया मौजूद हैं, हदीस मुबारक के, कुरान मजीद के, या इजमाए उम्मत के कतई दलायल मौजूद है कि हाँ ये हराम है, अगर उस हराम को जो है वो हलाल कोई कहना शुरू हो जाए, ये भी अकीदे की खराबी, ये भी अकीदे की खराबी, ठीक है? तो अगर कोई शेर साहब जो है ना वो ऐसा कहना शुरू हो जाए ना, तो अब ये और बात है कि भाई आजकल कुछ लोग माशाल्लाह इतने कि भाई वो तस्वीर जो है ना वो नाजायज है, तो अब जो है ना वो जो जो डिजिटल फोटो अगर कहीं नजर आ गई ना और शेख साहब उसके अंदर नजर आ गए, तो वो तो उसके ऊपर ही उनके लिए अकीदे की खराबी का फतवा सुना देंगे, ठीक है? कि इनका अकीदा खराब हो गया क्योंकि इन्होंने जो है वो डिजिटल फोटो इनकी जो है वो अब मौजूद है, या यूट्यूब के ऊपर जो है वो इनका कोई आपको बयान सुनने को मिल जाता है, चलो जी इनका अकीदा खराब हो गया। नहीं भाई, ठीक है ना, उसके ऊपर फतवा भी है। अब आप बेशक उसको फॉलो ना करें, बहुत अच्छी बात है अगर आप जो है वो बिल्कुल ही तस्वीरों से बच करके रहते हैं, बहुत अच्छी बात है आप, लेकिन ये आपका अपना फेल है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अब आप ये दूसरों के ऊपर तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, फिर इनका कहाँ से फोटो आ गया, इनका कहाँ से जो है वो यूट्यूब के ऊपर कोई क्लिप आ गया, तो अकीदा खराब हो गया भाई शेख साहब का। ऐसा नहीं है, कतई दलाए, ये कतई दलील नहीं है आपके पास कि आपने हर किस्म की तस्वीर को जो है वो नाजायज करार दे दिया। ठीक है, तो जन्नी दलील की वजह से ऐसा नहीं होता, कतई दलील की वजह से जो चीज साबित हो ना उसका इनकार कर देने से अकीदा खराब हो जाता है इंसान का, तो उसके ऊपर वो मान रहे हैं कि ताल्लुक तोड़ देगी। पीर के बारे में समझना कि उसको हर वक्त हमारी हालत का इल्म होता है बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, पीरी मुरीदी के मुतालिक ऐसी किताबें कभी ना देखे कि जिनका जाहरी मतलब खिलाफ शरा है। तो अपने पीर को जो है वो आलिमुल गैब समझ लेना कि उसको जो है ना वो मेरे हालात का पता है और सब कुछ पता है, और ये आपके अकीदे की खराबी है, पीर के अकीदे की खराबी नहीं है, आपके अकीदे की खराबी है अगर आप अपने पीर साहब को आलिमुल गैब समझना शुरू हो गए हैं। किसी ने यहाँ पे एक और सवाल लिखा है कि इज इट नॉट डिस्टर्बिंग टू आस्क ईच एंड एवरी थिंग। इट इज डिस्टर्बिंग टू आस्क ईच एंड एवरी थिंग, और इफ शेख इज बिजी वॉट शुड बी डन, दिस वॉज आस्क बाय माई चिल्ड्रन। ठीक है, चले अच्छा हुआ आपने लिख दिया कि दिस वॉज आस्क बाय माई चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चे तो इस किस्म के सवाल करते हैं क्योंकि वो तो डायरेक्टली क्लासेस नहीं सुन रहे होते हैं ना। ठीक है, लेकिन जो लोग क्लासेस सुन रहे होते हैं ना उनको गौर से बात सुननी चाहिए और गौर से समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनको ये बात समझ में आ जाए कि हर चीज जो है ना वो पूछने की नहीं होती। आप जो है वो शेख की क्लास को, शेख की बात को अगर तवज्जो से सुने तो बहुत सारी चीजों के जवाब आपको उसमें से भी मिल जाते। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर आप कोई मेजर स्टेप किसी किस्म का उठाना चाह रही हो तो उसके लिए हाँ और ना का आप सवाल पूछ लें कि जी मैं अच्छा, एक सवाल जो है ना वो बहुत सारे लोग, मसला ये है कि वो ये नहीं करते, ऐसे सवाल नहीं करते। ठीक है ना, वो जनरल किस्म के सवाल लिखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और भाई उस सवाल को जो है वो हम ऑलरेडी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके होते हैं, समझा चुके होते हैं, अब जो है वो हम आपको अलग से व्हाट्सएप के ऊपर वही बात समझाएं जो कि इतना लंबा टाइम लेकर एक क्लास के अंदर समझाई थी, उस वक्त आपने गौर से सुना नहीं, उस वक्त आप तवज्जो देती नहीं है। अब अलग से जो है ना वो व्हाट्सएप मैसेज कर रही होती है कि जी मुझे ये वाली बात बता दे, मुझे ये वाली बात बता दे, तो भाई आपके सवाल के ऊपर जो है ना फिर दूसरे लोगों की के सवाल जो है ना वो प्रायोरिटी हासिल कर लेते हैं, इस वजह से आपका टाइम नहीं आता, आपकी जो है वो आपके जवाब नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो भाई क्लास के अंदर गौर से बात को सुना, समझने की कोशिश किया करें। ठीक है ना, तब जो है ना वो आपको हर चीज के ऊपर सवाल करने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। अलबत्ता एक सवाल है जो कि अगर करें ना तो पढ़ करके भी खुशी होगी। ठीक है ना, पढ़ करके भी खुशी होती है और जवाब देने का जो है ना वो दिल में एक दाइया भी पैदा होता है जवाब देने का, वो क्या सवाल है। ठीक है ना, अगर टाइम होता ना तो आपसे पूछते कि आप बताएं कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसको पढ़ करके शेख को खुशी होती होगी और उनका दिल चाहे कि इस सवाल का जवाब दे, कौन सा ऐसा सवाल है। ठीक है, वक्त कितना रह गया अभी मेरे पास, घड़ी में, हाँ वक्त तो खैर ऊपर हो चुका है। ऐसा कौन सा सवाल है कि जिसको पढ़ करके शेख को खुशी हो और जवाब देने का जी चाहे उसका। ठीक है, वो सवाल, अच्छा मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तारीफ और मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहा कि मक्खन लगाएं तो शेख को खुशी होगी, नहीं, आपके मक्खन अपने पास रखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाजार से आ जाता है। ठीक है, तो हमें मक्खन मक्खन की कोई कोई जरूरत भी नहीं है, और उससे जो है ना नफरत ही होती है, बल्कि खुशी खुशी कोई भी नहीं होती, तो मक्खन की बात नहीं कर रहा, सवाल की बात कर, क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्वेश्चन दैट विल लिटरली दैट विल रियली प्लीज द शेख। ठीक है ना, कौन सा ऐसा सवाल, सवाल, ठीक है, वो सवाल ये होगा, ठीक है, कि कोई ये कहे कि आपने क्लास में, आपने चले बड़ा ख्याल कर, ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया अगरचे कि बड़ा मुख्तसर दिया, लेकिन दिस इज लीडिंग टू द आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दिया, आपने जो फरमाया है इसमें मुझे क्या करना है, आपने जो फरमाया है इसमें मुझे क्या करना है, क्या मतलब इसका, इसकी थोड़ी सी तफसीली इबारत ऐसे बनेगी कि आपने क्लास में जो ये बात समझाई थी ठीक है। तो अब मुझे अमल क्या करना चाहिए, या मुझे मुझे बल्कि क्या करना चाहिए वाला भी एक एक मसला है, ये नहीं बल्कि मुझे ऐसे करना चाहिए कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या पता चल रहा है कि इन सालिका साहिबा ने क्लास को गौर से सुना था, बात को समझने की कोशिश करी थी, तभी तो ये आगे से बयान करी है कि मैंने ये बात को ऐसे समझा है। अब उसके बाद वो अपने लिए एक ज़ाती डायरेक्शन मांग रही है कि मुझे ऐसे करना चाहिए कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उनकी बात से शेख को ये बात पता चल जाएगी कि हाँ ये गौर से बात सुनती है, राइट, ये तवज्जो देती हैं, ये समझने की कोशिश करती हैं। हो सकता है कि कभी इनकी समझ गलत हो जाए तो वो उसकी सलाह कर देंगे कि नहीं आपने बात को सही नहीं समझा है, ठीक है ना, आपने इस बात को सही नहीं समझा, ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी, या ये कि अगली दफा पूछ लीजिएगा, अगली क्लास के अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस किस्म के सवाल से जो है ना वो शेख को खुशी होती है कि भाई बात को तवज्जो से सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि क्लास के अंदर तो डम की तरीके से बैठे हुए हैं और जो है ना फिर उसके बाद आ जाएं व्हाट्सएप के ऊपर एकदम ही ओपन एंडेड किस्म का सवाल करने के लिए, ठीक है ना। और वो भी वो सवाल जिसके ऊपर के इतने दफा बात हो चुकी है, इतनी दफा जो है बात समझाई जा चुकी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, ऐसे नहीं कर सकते, और ऐसे यानी बेशक आपके शेख होंगे दुनिया के फालतू तरीन इंसान, लेकिन होते नहीं है, 24 घंटे उनके पास भी होते हैं, उनके पास भी बीवी बच्चे होते हैं, उनके पास भी जो है वो दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है। तो बात तवज्जो से सुनना जो है ना ये असल चीज, जो तवज्जो से नहीं सुनता ना वो तो अल्लाह के कलाम से फायदा नहीं उठा सकता, शेख के कलाम से क्या उसका फायदा होगा, ठीक है। खैर क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, तो इस वजह से हम यहाँ पर रोकते हैं कि पीरी मुरीदी के मुतालिक ऐसी किताबें कभी ना देखें जिनका ज़ाहरी मतलब खिलाफ शरा होता है। बहरहाल ये जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी वो अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। वो आपको दावा अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगली क्लास से पहले थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं।